बदरायण आचार्य ब्रह्म विद्या की सिद्धि से ही मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि मानते हैं। यही बात श्रुति सम्मत है। श्वेताश्वर में ब्रह्म को जानकर ही सब बंधनों से छूट जाना कहा है। आचार्य जैमिनी कर्म का कर्ता आत्मा होने से उसका स्वरूप ज्ञान कराने वाली विद्या को भी कर्म का ही अंग मानते हैं। जैसे यज्ञ के अंगों में फल कहने को उनकी प्रशंसा का भाव ही समझ जाता है, जैसे ही उसे पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन कहना प्रशंसा मात्र ही है। पुरुषार्थ सिद्धि तो कर्म से ही हो सकती है, विद्या के ज्ञान मात्र से नहीं हो सकती। केवल विद्या से ही पुरुषार्थ सिद्धि न होने के पक्ष में कर्मवानों का कर्म करना भी प्रमाण है। छंदोग में राजा अशुपति ने कहा कि मेरे राज में चोर और कंजूस मद की जगवमुख विद्याहीन नहीं है, पर स्त्री गमी पुरुष नहीं तो कुटला होगी ही कैसे। फिर उन्होंने यज्ञ करने और ऋतुओं को धन देने की बात भी कही है। इस प्रकार कर्म करने से भी ब्रह्म ज्ञान की फल सिद्धि हो सकती है। जो कर्म विद्या श्रद्धा और उपनिष्ठ पूर्वक किया जाता है वह अत्यंत बलवान होता है। के अनुसार विद्या को कर्म का ही अंग कह दिया है और इससे कर्म का ही महत्व सिद्ध होता है। बृहदारण्यक के अनुसार मरने वाले जीव के पीछे विद्या और कर्म भी साथ चलते हैं। ऐसे विद्या का कर्मांग होना ही सिद्ध होता है। कर्म का विधान ज्ञानवान के लिए ही किया गया है। ज्ञान न होने से कार्य का परे प्रकार का न होना संभव है। छंदोग के अनुसार गुरु सेवा से समय बचने पर विधिवत वेद पढ़ गुरुपद से लौटे फिर नित कर्म स्वाध्याय आदि करता हुआ पुत्र आदि की धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त कर विषयों से निवृत्त हो। इस प्रकार आचरण करने वाले को ब्रह्म लोक की प्राप्ति कही गई है। इससे विद्या कर्म का ही अंग सिद्ध होती है। श्रुति में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने का उपदेश दिया है। यही अर्थ है कि इसमें कर्म के बिना जीवन ही निरर्थक बना दिया। विद्या तो होनी ही चाहिए, परंतु कर्म के बिना विद्या की सार्थकता नहीं बनती। आचार्य जैमिनी द्वारा अपने मत की सिद्धि के लिए जो युक्तियां प्रस्तुत की गई उन्हें आचार्य बदरायण आपास मात्र मानते हैं और विद्या को कर्म का अंग न मानकर वे विद्या की ही प्रमुखता देते हैं। यदि ब्रह्म ज्ञान के साथ ज्ञानी कर्म भी करे तो उससे कोई हानि नहीं होगी और वे कर्म विद्या का महत्व स्थिर रखने के सहायक हो सकते हैं। परंतु श्रुतियों तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ही अधिक महत्व देती है। मुंडक श्रुति के अनुसार कार्य कारण रूप ब्रह्म को जान लेने पर मनुष्य हृदय की चेतजड़ ग्रंथि बिध जाती है, सब संशय और कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म की निरर्थकता सिद्ध होती है। श्रुतियों ने कर्म को विद्या का साधन बताया है। विद्या उसका फल होने से विद्या की श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है, क्योंकि साधन का महत्व फल की अपेक्षा न्यून होता है। सभी श्रुतियों ने समान रूप से कर्म की अपेक्षा विद्या का ही श्रेष्ठ होना कहा है। एक स्थल पर विद्या से सुपन्न हुए कार्जेया ऋषियों ने कहा है कि हम अब अधिक अध्ययन अधिक यज्ञ क्यों करेंगे, पहले यज्ञ आदि कर चुके हैं, अब तो आत्मज्ञान के द्वारा संतति ऐश्वर्य कामना को छोड़ भिक्षु चर्या करेंगे, इससे कर्म का त्याग सिद्ध होता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार इष्ट पूर्त कर्मों को श्रेष्ठ समझने वाले मूर्ख उससे विपरीत वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे शुभ कर्मों के फल से स्वर्ग के पीठ स्थान में जहां के भोगों का अनुभव कर पृथ्वी जहां इससे भी नीचे के लोक में जा गिरते हैं। इससे भी कर्म की निरर्थकता सिद्ध होती है। आचार्य जैमिनी के मत की पोषक रहने पर भी वह श्रुति सब विषयों से संबंधित नहीं है, केवल उद्गीत विषयक होने के एक देशीय है। इस प्रकार वह केवल उद्गीत विद्या को ही कर्म का अंग कहती है, अन्य विद्याओं से उसका संबंध न रहने से यही मान्यता ठीक है। विभागा शाश्वत, जैसे कुछ लोगों का हिसाब चुकाने के लिए 100 मुद्राएं रख ली जाए और उसमें से जितना जिसे देना है उसी हिसाब से मुद्राएं दी जाती है, अर्थात किसी को 5 मुद्राएं, किसी को 10 मुद्राएं, किसी को 85 मुद्राएं उसके अधिकार के अनुसार दी गई। वैसे ही जहां फल का विभाग समझना चाहिए, साधन से गिरे हुए अथवा वासना में लिप्त मनुष्यों को उसके विद्या और कर्म दोनों संस्कारों के अनुसार फल मिलेगा, परंतु ब्रह्म ज्ञानी के कर्म ता यही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म लोक गमन के समय कर्म उसके साथ नहीं जाते, वह केवल विद्या के बल से ही ब्रह्म लोक में पहुंचता है। इथे विद्या का भाव ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान की विद्या है। विद्या सपन विवल व्यक्ति के लिए कर्म करने का जो उपदेश प्रजापति ने किया है, वह गुरुकुल से अध्ययन करके लौटने वाले स्थानक ब्रह्मचारी के लिए है। ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके निकलने पर मनन और निध्यासन पूर्वक अनुष्ठान का विधान सविधि कर्म का अनुष्ठान नहीं है। जीवन भर कर्म करने के लिए ही कहा गया, वह ब्रह्म ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है। उसे विद्या का कर्मांग होना या विद्या के पुरुषार्थ की सिद्धि न होना सिद्ध नहीं होता। उस श्रुति में कर्म अनुष्ठान की व्यवस्था विद्या को प्रशंसा ही समझी जा सकती है। यदि इसे समान भाव में ज्ञानी के लिए भी मान ले तो भी वह ब्रह्म ज्ञानी उन कर्मों से लिप्त नहीं होते। यह श्रुति वाक इसमें प्रमाण रूप है। ब्रह्म ज्ञानी स्वेच्छा पूर्वक कर्म का त्याग कर देता है। वाचनेक में ब्राह्मण की ऐसी महिमा है भाव ब्रह्म ज्ञानी की कि वह कर्म से ना बढ़ता है ना घटता है, ऐसा कहा है। यह ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म अनुभवी या ब्रह्म ज्ञानी समझना चाहिए। इस प्रकार कर्म से वृद्धि आदि लाभ न होने से कर्म का त्याग करना उचित ही है। श्रुति में ब्रह्म ज्ञान होने पर कर्मों का नष्ट होना कहा है। गीता में भी काष्ठ अग्नि द्वारा भस्म करने के समान ज्ञान अग्नि का सब कर्मों को भस्म कर देना कहा है। उससे ब्रह्म ज्ञानी को कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन होता है। जिन आश्रमों में वीरजवानी नाड़ी को इसी प्रकार च्युत न हो सकने के लिए ऊर्ध्ववाहिनी की जाती है, उन ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में अग्निहोत्र आदि कर्मों के रहने पर भी ब्रह्म विद्या का अधिकार रहता है। इससे भी विद्या का कर्मांग होना सिद्ध नहीं होता। आचार्य जैमिनी का मत है कि उक्त प्रकार के आश्रम पालन करने योग्य नहीं। गृहस्थ आश्रम में कर्म करते हुए ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। उक्त श्रुति में भिक्षु चर्चा करने के वाक से संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र होना बताया है। इसमें विधि को सूचित करने वाले क्रियापद का प्रयोग न होने से इसे विधि नहीं मान सकते। तैतरीय श्रुति से अग्निहोत्री का त्याग करने वाले को देवताओं के वीरों को मारने वाला कहा है। इसे भी संन्यास अथवा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का अपवाद सिद्ध होता है। निषेध जैमिनी के मत का खंडन करते हुए बदरायन उन आश्रमों का श्रुति में अनुवाद होना स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो अन्यत्र मन हो उसी का अनुवाद होता है। विभिन्न श्रुतियों में गृहस्थ आश्रम के विधान के समान अन्य आश्रमों का भी विधान मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान के समान ही सब आश्रम धर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। अग्निहोत्र का त्याग उसके अधिकारी ही कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थियों को वैसा करना निषिद्ध है। संतति की परंपरा नष्ट न होने देने का उपदेश गृहस्थियों अथवा पूर्ण व्रत न होने वालों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं। श्रोव में प्रक्षिप्त हवि को आह्वनीय के प्रति लेते समय हवि के नीचे समदा धारण करे, क्योंकि समदा का ऊपर धारण करना देवों के लिए होता है। ऐसे ऊपर धारण की क्रिया को अपूर्व न होने से विधि माना गया है। इसी प्रकार चारों आश्रमों के संकेतक वर्णन को अनुवाद नहीं माना जा सकता। विभिन्न श्रुतियों में आश्रमों के लिए विधि कही गई है। जहाँ संकेत रूप में आश्रम वर्णन हो वहां संकेतक विधि माननी चाहिए। यदि उद्गीत के विषय में कहे गए श्रुति वचनों को स्मृति मात्र ही कहो और सभी कर्मांग भूत उपासनाओं के गुणों को उनकी उसकी मात्र बताओ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएं और उससे संबंधित गुणों को पहले कहीं नहीं कहा गया है। छंदोग में कहा गया है कि यह जो अद्गीत है वह रसोत्तम ब्रह्म का आश्रम और पृथ्वी आदि रसों में आठवां सर्वश्रेष्ठ रस है। ऐसा वर्णन अन्यत्र नहीं न होने से अपूर्व है और विधि अस्तु धारणे अपूर्वत्वात्। इत्यादि वाक्यों से यह अपूर्व विधि है और प्रशंसा मात्र नहीं। विधि मानने में अपूर्व होना ही कारण हो ऐसी बात नहीं, किंतु उस प्रकरण में विधि सूचक शब्दों की भी स्पष्ट उक्ति है। ऐसे छंदोग उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, इन उपासनों की अपूर्व विधि बताने के समान ही उनका अपूर्व काल भी कहा गया है, इसलिए इसे उसकी मात्र कहना युक्ति संगत नहीं है। उपनिषदों में बहुत सी कथाओं का प्रसंग मिलता है जिनमें मैत्रेयी, याग्वल्क, यम, नचिकेता, ज्ञानश्रुति, रैकव, प्रवृत्ति उपाख्यान है। इन सब को पारी पल्लव नामक कर्म की अंगभूता कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि जहां पारी पल्लव वाचक शीत अर्थात पारी पल्लव की कथा है, इन सब को पारी पल्लव नाम कर्म की अंगभूता कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहां कथा कहने की व्यवस्था की है, उससे आगे ही आदि विशेषताएं कही है, वे कथा ही पारी पल्लव है, इसलिए सभी कथाएं पारी पल्लव कर्म की अंगभूता होना सिद्ध नहीं होती। पारी पल्लव अंगरूप अंगभूता अंगरूप निश्चित उपकथ अख्याकाएं पारी पल्लव कर्म के योग हैं। उपनिषदों की अख्यायिका ब्रह्म के स्वरूप का सरता पूर्व ज्ञान कराने के लिए निमित्त कही गई है, तथा उन प्रकरणों में कही गई विद्याओं से भी इन कथाओं का एक वाक रूप संबंध होने से इन्हें पारी पल्लव कर्म का अंग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार यह कथाएं ब्रह्म विद्या की ही अंगभूता सिद्ध होती है। उपरोक्त परमाणुओं और युक्तियों से सिद्ध हुआ कि यह जो ब्रह्म विद्या रूप महाजग है, इसके लिए किसी प्रकार की जग सामग्री आवश्यक नहीं है। ईंधन, अग्नि, कीर्तादि कुछ भी नहीं चाहिए। यह जग तो स्वयं सिद्ध है, और जब इसकी सिद्धि हो जाती है तब ब्रह्म का साक्षात्कार ही फलत्व प्रतिपादन है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या स्वतंत्र होने से कर्म की अंग रूप नहीं हो सकती। बृहदारण्यक में इस ब्रह्म को ब्रह्म निष्काम भाव से स्वाध्याय जगदान तप से जानने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार कहने से प्रतीत होता है कि ब्रह्म तत्व को जानने के लिए वर्ण आश्रम संबंधी सभी कर्मों की आवश्यकता है। जैसे घोड़ा सवारी करके कहीं जाने के कार्य में आता है, परंतु किसी मकान पर चढ़ने के कार्य में नहीं आ सकता, वैसे ही विद्या प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी ब्रह्म प्राप्ति में उसकी अपेक्षा निरर्थक सिद्ध होती है। श्रुति में ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले साधु को शाम, दम आदि साधनों का विधान किया गया है। श्रुति के द्वारा शाम, दम आदि को विद्या का अंग विधान करने से उनका अनुष्ठान साधु को करना चाहिए। पक्ष अपक्ष अनपक्षण की व्यवस्था श्रुति में देखी जाती है, परंतु यह व्यवस्था अनुज्ञा सहमति मात्र ही समझनी चाहिए। जब कहीं से शुद्ध अन्न प्राप्ति की आशा न रहे और अन्न के अभाव में प्राण जाने की आशंका हो, तभी दूषित अन्न खाना उचित है। छंदोग में चाकरायण ऋषि की कथा मिलती है, उन्हें अन्न के बिना प्राण जाने के वैसे चंडाल के जूठे अन्न का पक्षण किया था। चंडाल द्वारा जल प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसे नहीं पिया, क्योंकि जल सब जगह मिल सकता था। इससे सिद्ध होता है कि नितांत आवश्यकता के बिना दूषित अन्न भोजन का श्रुति ने निषेध किया है। प्राण रक्षा के लिए पक्ष का पक्षण करने से अन्न श्रुति में बाधा नहीं हुई, क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि इत्यादि से छंदोग श्रुति आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि मानती है। इस प्रकार आपत्ति काल के सिवा अन्न कभी दूषित भोजन न करना ही उचित सिद्ध होता है। मनुस्मृति के अनुसार प्राण निकलने के डर से जहां तहां काफी अन्न खा लेने पर पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कीचड़ फेंकने से आकाश लिप्त नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी शरीर कर्म अथवा दम समाधि कर्म उचित बताए गए हैं। उसी प्रकार अपने अपने आश्रम के कर्म भी ब्रह्म ज्ञानियों को करने चाहिए। उन कर्मों के करने से विद्या की वृद्धि होती है। निष्काम भाव से किए जाने वाले आश्रम संबंधी कर्म आचार व्यवहार आदि साधन में सहायक सिद्ध होते हैं, इसलिए उनका पालन करना आवश्यक कहा गया है। उपरोक्त आश्रम धर्मों का पालन करने के लिए श्रुति और स्मृति गीता से अज्ञानी के कर्म में आसक्त होने के समान ही ज्ञानी को भी लोक संग्रह अर्थ अनासक्त रूप से कर्म करने का उपदेश प्रतिपादित होता है। इस प्रकार धर्म अनुष्ठानों का कर्तव्य दोनों लक्षणों से सिद्ध हुआ। श्रुति ने अनुष्ठाता ज्ञानी का पापों से अभिभूत न होना ही कहा है। बृहदारण्यक के अनुसार आत्मज्ञानी हृदय में स्थित आत्मरूप ब्रह्म के साक्षात से सब पापों से पार हो जाता है। उसे पाप कष्ट नहीं पहुंचाते, किंतु वही पापों को संताप देने वाला हो जाता है। इसी प्रकार छंदोग में ब्रह्मचर्य रूप अनुष्ठान से जिस आत्मा की प्राप्ति कही है, वह प्राप्ति नष्ट नहीं होती। श्रुति में रैकव आदि अनेक ब्रह्मनिष्ठों का वर्णन, जो बिना आश्रम के ही मुक्त हो गए, आश्रम धर्म न होने पर भी पूर्व जन्म के अनुषित कर्म आदि के द्वारा विद्या का आविर्भाव हो जाता है। धर्मों की फल प्राप्ति से पहले ही मृत्यु हो जाने पर फल सुगंध बना रहता है, और दूसरे जन्म में शुद्ध वृत्ति की सुसंगत से ही विद्या प्रकट होने लगती है। श्रुति के अतिरिक्त स्मृति भी बिना आश्रम धर्म के ही मोक्ष प्रतिपादन करती है। गीता में तो माँ हे पार्थ व्यापाश्रित इत्यादि में स्त्री वैश्य शूद्र आदि तथा अन्य सभी पाप जोनि बालों का ईश्वर के शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होना भगवान स्वयं कहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि बिना धर्म कर्म साधन के भी ईश्वर भगत की मुक्त हो जाती है। भगवान अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं, इसका प्रमाण गीता में मिलता है। वे कहते हैं, जब भी मैं समान भाव से सब भूतों में व्याप्त हूँ, मेरा कोई प्रिय या अप्रिय नहीं, परंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से निरंतर मेरा भजन करता है, उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ है। गीता देव भक्तों पर विशेष अनुग्रह वाली बात को स्वीकार करते हुए भगवान स्वयं श्री मद भागवत में जय भगत परा धीनो इत्यादि मैं भगत के अधीन होने से प्रतंत्र सा हूँ, क्योंकि मैं भगतों को प्रिय हूँ, उन साधु भगतों ने मेरा हृदय जीत लिया है। भक्ति बेशक धर्म ही श्रेष्ठ है, ये बात ऊपर के प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है। श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाणों से यहाँ बात ठीक है। श्वेताक्षर श्रुति में कहा है कि हे साधक, संपूर्ण विश्व के सृष्टा सर्वांतरयामी ब्रह्म की प्रेरणा से उसी ब्रह्म की सेवा आराधना करो, उसी की शरण लेकर उसी में विलीन हो जाओ। इस प्रकार तुम्हारे पहले किए कर्म वासना इत्यादि साधन में विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। सेवा और आराधना के संबंध में श्री मद भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन हुआ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चन बंदन दास साख भाव रखे और आत्म निवेदन करे। इस प्रकार भक्ति भाव की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। आत्मनिवेदन गुरु नु अपना अर्पण करना। सन्यासी का वानप्रस्थ या गृहस्थ आश्रम में लौटना अथवा वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम में आना शास्त्र के विपरीत है, क्योंकि ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का विधान है। इसके सिवा ब्रह्मचारी गृहस्थी संन्यास आश्रम में सीधे भी प्रवेश कर सकते हैं, परंतु ऊपर से नीचे के आश्रम में लौटने का विधान कहीं भी नहीं है। इसी मत का आचार्य जैमिनी ने अनुमोदन किया है। ब्रह्मचारी का व्रत भंग होने पर उसका प्राश्चित कर सकता है, परंतु संन्यास या वानप्रस्थ ग्रहण कर लेने वाला आश्रम नियमों को भंग कर दे और पतित हो जाए तो उसके लिए किसी प्राश्चित का विधान नहीं है। कितने ही आचार्य इस प्रकार के पतन को उपपातक मानते हुए उसका प्राश्चित होना मानते हैं, जैसे दूषित अन्न खाने के लिए शास्त्रों में प्राश्चित का विधान है, वैसे ही सन्यासी और वानप्रस्थी भी व्रत भंग होने पर प्राश्चित करने के अधिकारी हैं। प्राश्चित का भाव तो इसलिए कहा गया जिससे यह अपने व्रत की यत्न पूर्वक रक्षा कर सकें। उच्च आश्रम से पतित सन्यासी वानप्रस्थी दोनों ही महापातक या पातक भेद से प्राश्चित के अधिकारी या अन्न अधिकारी कैसे भी होवे बहिष्कृत ही होने चाहिए। बाई पाठ करना। अन्था आश्रम व्यवस्था की परंपरा नष्ट हो जाएगी और उच्च आश्रमों में प्रिय आचरण संबंधी दोष उपस्थित होगा। उपासना में जब यजमान ऋतुओं का वर्ण कर उससे कर्म कराता है तब उस कर्म का फल ऋतुओं को नहीं मिलता, यजमान को मिलता है। छंदोग में जो विद्वान वृष्टि यज्ञ में पांच प्रकार के साम की उपासना करता है वह इस यजमान के लिए वर्षा करता है, उसी से वर्षा होती है। बृहदारणक मैं ऋतुज अपने यहाँ यजमान के लिए जिसकी कामना करता है उसे पाता है। जहाँ अपनी जान यजमान की कामना से शंका हो सकता है कि फल का अधिकारी ऋतुज हुआ या यजमान, तो यह समझना चाहिए कि जैसे न्यायालय में वकील अपने मवक्कल मालक کہ بال کو اپنا ہی بال بتاتا ہے اور اس کا ارتھ موکل کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی جہاں پل ججمان کو ہی ہوگا۔ اوڈ لومی آچارج جاگاتی کرموں میں رتویوں کا ہی کرتا پن مانتے ہیں، کیونکہ تاناتی دے کر ہی ججمان اس کا ورن کر لیتا ہے، پرنتو ججمان دوارا دی گئی دکشنا کا ہی جے ادھکاری ہوتا ہے، پھل کا ادھکار تو ججمان کو ہی ہے۔ رتوج کا کرم ججمان کے نمت ہوتا ہے، اس کا پرمان شندوگ میں، اس لیے ودوان ادگاتا ججمان سے کہے کہ تیرے کس کام کے لیے گان کروں، اسے بھی ججمان کا ہی پھل میں ادھکار سدھ ہوتا ہے۔ برہدارنک میں کوہول جاگولک سمباد میں کہا ہے، بیراگ لینے کے لیے برہم پنڈت کو پلے پرکار سمجھ کر بالک کے سمان نرمان ہو کر رہے، پھر منی ہو جائے، پھر مون امون دونوں سے اپارت ہو جائے، تب برہم بیتا بنتا ہے۔ اسے پنڈت اور بل پاو کے لیے تو ستھت رہنے کی اچھا کرے جائے ودھی واک کہہ دیا، کنتو منی کے لیے کوئی ودھی واک نہ ہونے پر سوتراکار ایک کے لیے پر یوگت ودھی واک کو دوسرے کے لیے بھی ماننے کا نردیش کرتے ہیں، جہاں منی سے شرگن وچار بچوں کے سمان سرکتا اور نرحب مانتب کے پریپکو ہونے پر منن اور مون پا بنتا ہے۔ اس تریتی سادن کے لیے بھی پکشانتر سے ودھی واک سمجھ لینا ٹھیک ہے، مون اوستھا کے پشچات ہی برہم ساکشات کار ہو سکتا ہے۔ گرہستھ آشرم میں چاروں آشرموں کا پاو ہے، کیونکہ برہم چرج آشرم کے بعد گرہستھ آشرم میں پرویشٹ ہونا کہا ہے۔ دوسرے گرہستھ آشرم میں ست گرو سے ہی شیش برہم چرج پوروک شکشا پراپت کرتا ہے، اور بان پرست یا سنیاس آشرموں میں پرویشٹ ہونے والے گرہستھی ہی ہیں، اور ان سبھی آشرموں کا پالن بھی گرہستھ آشرم سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سب آشرموں کا پاپ وہاں اپست ہونا کہا ہے۔ ساتھ ہی برہم ودیا کا ادھکار چاروں ہی آشرم میں ست سادھکوں کو ہے، اس لیے اس پرکرن میں گرہستھ آشرم کا ورنن کرتے ہوئے اپسنہار کیا گیا ہے۔ اس کا تاتپر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گرہستھ ہی برہم ودیا کا ادھکاری ہے، کنتو یہ ماننا چاہیے کہ کیول سنیاسی آدی اوچ آشرم والے ہی برہم ودیا کے ادھکاری نہیں ہیں، گرہستھ آشرمی کو بھی برہم ودیا پراپتی کا ادھکار ہے۔ مون اوستھا کا سادھن جیسے سبھی آشرم میں کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی شروتی ودیا کے لیے اوپر جو سب سادھنوں کا برہم ودیا کا ادھکار آشرم والوں کو ہے، اوپر جو سب سادھنوں کا سبھی آشرم والوں کے لیے ودھان کرتی ہے، ایسے سدھ ہوتا ہے کہ برہم ودیا کا ادھکار سبھی آشرم والوں کو ہے۔ بالک کے پاؤں کا گرہن کرنا برہم گیانی کے لیے کہا ہے، بالکوں میں جو سدگن مان دم آدی سے رہت ہونا آدی ہوتے ہیں، ویسے ہی پا برہم گیانی میں رہنے چاہیے۔ اس بند میں برہمن برہم گیانی وہ ہے جس کا سوجنتا اسجنتا ودھتا مورکھتا سداچرن دوراچرن آدی کا کسی کو گیان نہ ہو، ارتھات بالک کے سمان اپنے پنڈت آدی پاؤں کا پردرشن نہ کرے۔ برہم گیانی کی پراپتی برہم گیان کی پراپتی میں یدی किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो तो इसी जन्म में साधक को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। श्रुति में देखा जाता है कि वामदेव ऋषि को इसी जन्म में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यदि साधना के बीच में ही विघ्न उपस्थित हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो पूर्व संस्कार से प्राप्त बुद्धि उसे दूसरे जन्म में स्वयं ब्रह्म प्राप्ति के साधन में लगा देती है। ब्रह्म विद्या का फल इसी जन्म में मिले या दूसरे जन्म में, इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता। इसी प्रकार वह फल इस लोक में मिले या ब्रह्म लोक में, इसका भी कोई निश्चित नियम न होने से इस जन्म में या दूसरे जन्म में अथवा इस लोक में या ब्रह्म लोक में कभी भी कहीं भी मिल सकता है। ये साधक की भावना आदि पर निर्भर है, क्योंकि श्रुति में मुक्त अवस्था का स्वरूप निर्धारित है। यदा सर्वे प्रमुच्यते प्रमुच्यन्ते इत्यादि का श्रुति के अनुसार जब साधक की हृदयगत सर्व कामनों का सर्वथा भाव हो जाता है, तब वह अमृत हो जाता है और उसे इस लोक में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्था पादा समाप्ता। तृतीया अध्याय संपूर्णम। चतुर्थो अध्याय प्रथम पादा। श्रुतियों में ब्रह्म ज्ञान विश्व उपदेश बारंबार किया गया है। ऐसे प्रतीत होता है कि साधक को उपासना का अभ्यास बारंबार करना चाहिए। प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना के जो नौ अंग कहे हैं, उनमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, पूजन, बंधन, दास, सख, आत्मनिवेदन, यह नौ भाव ही प्रत्येक अंग में उपस्थित हैं। एक के वर्णन से सभी का वर्णन स्वयं हो जाता है। जो प्रभु कथा सुनेगा वह कहेगा भी, स्मरण भी करेगा, परंतु उसके नौ पेद बनाकर नौ बार कहने का तात्पर्य उपासना की आवृत्ति से ही है। इससे सिद्ध होता है कि बारंबार अभ्यास करने से सिद्धि शीघ्र हो जाती है। भगवद गीता में सब समय में निरंतर स्मरण करने का उपदेश दिया है। स्मरण भी कर और युद्ध भी करता रह, इन दोनों कार्यों को करता हुआ आत्म अर्पण युक्त मन बुद्धि से निस्संदेह ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश स्वयं भगवान ने किया है। इससे ब्रह्म विद्या के साधनों को बारंबार आवृत्ति होने से शीघ्र ही सिद्धि होने का प्रतिपादन होता है। उपासक आत्मभाव से ब्रह्म की उपासना करे। जैसे आत्मा शरीरम, जीवात्मा जिस ब्रह्म का शरीर है अथवा वह तेरा आत्मा अंतर्जमी है इत्यादि श्रुति वाक्यों में ब्रह्म को अपना आत्मा मानने का विधान है। इसी आत्मभाव से ब्रह्म ज्ञानी उसे प्राप्त होते हैं और दूसरे को भी, जिन्हें वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, सबके अंतर में रहने वाला जो तेरा आत्मा है इस प्रकार बताकर ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। आत्मा का प्रतीक मन कहा गया है, परंतु मन में आत्म भाव नहीं बनता, क्योंकि मन इंद्रिय है, ईश्वर नहीं हो सकता। वह ब्रह्म ज्ञान का आधार मात्र है। स्मृति में आकाश, बाजू, अग्नि, जल, पृथ्वी, ज्योति, जीव, दिशा, वृक्ष, नदी, समुद्र आदि को ब्रह्म का शरीर कहा है। ये सब उपासक का आत्मा न हो सकने से आत्म भाव के अधिकारी नहीं। उपासक की अलभ्यता, बेप्रतीति, अलभ्यता से सहज उपलब्ध वस्तु में उपासक भाव रखकर उसे उसका प्रतीक बनाया जाता है। प्रतीक में उपास्य के श्रेष्ठ होने से उसमें प्रतीक का आरोप नहीं हो सकता। प्रतीक उपासना का विधान उन्हीं उपासकों के लिए उपयोगी है जो उपास्य के तत्व को जानने में असमर्थ हैं। इस प्रकार प्रतीक उपासना भी फलदायिनी सिद्ध हो सकती है। प्रतीक एक वस्तु ध्यान करना, अहंग्रह सारे अंश परमात्मा देखना, छंदोग के अनुसार उद्गीत में अद्वित की भावना पर उपासना का विधान है, अर्थात जो जय तप रहा है उस उद्गीत की उपासना करे। इसे सिद्ध हुआ कि छोटे से बड़े की भावना करने से फल मिल सकता है, परंतु बड़े में छोटे के भाव का कोई प्रयोजन नहीं है। चलते फिरते, काम करते, खड़े या सोते हुए में उपासना करना संभव नहीं है, क्योंकि उन स्थितियों में मन अन्य भावों में लगा रहता है और सोते हुए भी नींद आना संभव है। इसलिए बैठे हुए की उपासना कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सकता है। उपासना में ध्यान आवश्यक है और बैठे हुए ही ध्यान हो सकता है, क्योंकि चलते फिरते आदि में भाव की चंचलता का रहना स्वाभाविक है। ध्यान की स्थिति अकाग्र मन से ही बनती है, इससे बैठकर उपासना करना ही उचित है, योग्य है। उपासक को निश्चल रहकर ही उपासना करनी चाहिए। हिलना जुलना उपासना में वर्जित है। स्मृति में भी बैठ कर और निश्चित रहकर की उपासना करने का उपदेश है। गीता के अनुसार आसन पर बैठ मन को एकाग्र कर चित्त इंद्रियों को उपासना करे और शरीर सिर ग्रीवा को समान और अचल रखते हुए दृढ़ होकर नासिका के अगर भाव को देखे, अन्य दिशाओं को न देखे। श्वेता शेर उपनिष्ठ क्षमय शुचो शर्करा इत्यादि शक्ति में योग के लिए स्थान बताया है कि जो सब प्रकार से समतल पवित्र बालू आदि से रह तथा शब्द जल और आश्रम की दृष्टि से मनोनुकूल हो, जहां आंखों को पीड़ा न पहुंचे, वायु के झोंके न लगे, ऐसे एकांत गुहा आदि स्थान में बैठकर योगाभ्यास करे। इसमें स्थान विशेष का निर्देश नहीं दिया है, किंतु साधु को सुविधा का ध्यान रखते हुए मनो अनुकूल कहकर उसी की इच्छा पर छोड़ दिया है, परंतु ऐसा स्थान वश हो जहां एकाग्रता बनी रहे। साधक जब तक जीवित रहे तब तक उपासना का अभ्यास करता रहे। वह इस प्रकार आयु पर्यंत उपासना में लगा रहकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और निश्चय ही वहां से लौटकर नहीं आता। मरण काल तक चिंता आदि करने का एक स्पष्टीकरण गीता में कहा है कि अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है। यदि मरण काल में विषय भावना रही तो उसी भावना के अनुसार देह की प्राप्ति संभव है। स्वपर्ण श्रुति में मुक्ति होने तक उपासना करने का उपदेश है। इस प्रकार मरण काल तक उपासना साधक का कर्तव्य सिद्ध हुआ। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि उपासना का फल प्राप्त हो जाने पर पहले या पिछले किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। छंदोग के अनुसार मूंज का तिनका अग्नि में डालते ही भस्म हो जाने के समान ब्रह्म ज्ञानी के भी सब पाप नष्ट हो जाना सिद्ध होता है। छंदोग में ही सात काम जवाल ने अपने शेष उप कौशल से जथा पुष्कर पलाश आपको न शिव शांत एवमेव विधि पाप कर्म ना शिलशते कहे कहकर कमल पत्र पर जल जल न ठहरने के समान ब्रह्म विद्या को जान लेने पर पाप का लिप्त ना हो सकना सिद्ध किया है। जैसे उपासना का फल मिलने पर पाप का क्षय होता है वैसे ही पुण्यों का क्षय हो जाना कहा है। गीता के विच परज्वलत अग्नि के द्वारा ईंधन को भस्म कर देने के समान ज्ञान अग्नि द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्म हो जाना कहा गया है। सर्वे पापमानु अतो निवर्तन्ते इत्यादि छंदोग श्रुति ने पुण्य कर्म को भी पापों के अंतर्गत माना है, क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति मानी गई है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति भोग रूप होने से मोक्ष में विघ्न स्वरूप है। इससे सिद्ध होता है कि पाप पुण्य दोनों का क्षय होने से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। जिन कर्मों का फल प्रारंभ हो जाता है वे तो भोगने से ही नष्ट होते हैं, किंतु जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ दैव चिरं जावन नामोक्षत संपत्ति से अर्थात अनुष्ठाता को तभी तक को छूटने पर तो मुक्त हो ही जाता है। इसे सिद्ध हुआ कि देह के साथ प्रारब्ध है और प्रारब्ध के नष्ट होने के साथ ही शरीर का नाश होता है। अग्निहोत्र आदि या नित्य कर्म है, इन कर्मों का नष्ट होना नहीं कहा है, क्योंकि नित्य कर्म करने का उद्देश्य विद्या रूप फल कार्यों की रक्षा के लिए है, इसलिए इन कर्मों के त्याग का उपदेश नहीं है। अग्निहोत्रादि कर्म विद्या के सहायक रूप ही है ही, उनसे भिन्न जो श्रेष्ठ कर्म है वे भी ब्रह्मवेत्ता और अन्य प्रकार के साधकों को करने चाहिए, ऐसा एक शाखा वाले विद्वान मानते हैं। ईशावास स्मृति के अनुसार कर्म और ज्ञान को साथ साथ जानने वाला कर्मों द्वारा मृत्यु को पार कर अमृत को प्राप्त होता है। या देव विद्या या करोति इत्यादि श्रुति के अनुसार जो विद्या के द्वारा किया जाता है वह अत्यंत बलवान कर्म होता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान के बिना कर्म का कोई महत्व नहीं, हाँ ज्ञान के सहित किए जाने वाले कर्म का श्रेष्ठतम स्वीकार करना अनुचित नहीं है। जिन पुण्य पाप रूप कर्मों का फल प्रारंभ हो गया है उन्हें तो भोगना ही होगा। ब्रह्म की प्राप्ति उन भोगों को भोगने पर ही हो सकती है, जब तक उन कर्मों का फल भोग कर उन्हें नष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक मोक्ष संभव नहीं है। द्वितीय पादा वाणी का मान में समा जाना श्रुति ने भी कहा है। जैसे अस्या स्वाम पुरुषस्या परजतो वांग मनसी संपदते मना प्राणे प्राणस्ते जसी तेजा परस्या देवतायाम अर्थात जब यह मनुष्य मरने लगता है तब वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में प्राण तेज में और तेज ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है मरते हुए मनुष्य का मन रहते हुए भी वाणी का कार्य बोलना बंद हो जाता है। वाणी के लीन हो जाने के बाद अन्य सभी इंद्रियां मन में ही चली जाती हैं। इस प्रकार दर्शन श्रवण रसना इत्यादि सभी वृत्तियां मन की वृत्तियों में लीन हो जाती है। मन प्राण के साथ मिल जाता है, यह श्रुति में आए हुए मना प्राण वाक से सिद्ध होता है। बृहदारण्यक में अंतम काल से सब प्राण सब ओर से उपगम करते हैं, समा जाते हैं और उस जीव के उत्कर्मण के साथ प्राण भी उत्कर्मण करता है और मन आदि से युक्त प्राण की जीव के साथ प्रतिष्ठा होगी। इससे सिद्ध होता है कि मन आदि सहित प्राण जीव में स्थित हो जाता है। जीवात्मा मरण उपरांत पांच भूतों में स्थित होता है। इसका प्रमाण यह है कि बृहदारण्यक में जीवात्मा को पृथ्वी में, आपो में, वायु में, आकाश में और तेजो में कहा है। छोटी वाक से मरने पर तेज में मिलना कहा गया है। जे शंका होने पर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। तेज शब्द से जहाँ पांच भूतों का ही ग्रहण है, क्योंकि जीवात्मा को पृथ्वी में, आपो में आदि कहकर पांचों तत्वों से युक्त बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी ज्ञानी और अन्य जन्म ग्रहण करने के अधिकारी कर्मवान पुरुष ही दे त्याग कर सूक्ष्म शरीर में जाने तक की गति एक सी ही है, क्योंकि ब्रह्म लोक में जाने के लिए भी सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है और अन्य लोकों या दूसरे जन्म में जाना भी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए देवयान मार्ग में जाना प्रसिद्ध है। जब तक ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं होता तब तक तो शरीर संबंध रहेगा ही। जीवित अवस्था में स्थूल शरीर और मरने पर सूक्ष्म शरीर जहाँ जय भी समझ लेना चाहिए कि जिसका स्थूल शरीर से संबंध नहीं छूटा, अर्थात जिसे जन्म मरण के चक्कर में रहना ही पड़ रहा है, उसका पाप से रहित हो जाना ही अमृतत्व है। जब यह पाप से छूट जाएगा तब उसे पुनर्जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता ही न रहेगी। ब्रह्म ज्ञानी मरण काल के पश्चात ब्रह्म लोक गमन करता है। तब जिस भूत समुदाय में स्थित होता है वह भूत समुदाय स्थूल नहीं है, उसका सूक्ष्म होना श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। छंदोग में जिन 100 नाड़ियों का वर्णन किया है उनमें से एक मूर्धन नाड़ी से उत्क्रांत होने वाले आत्मा को अमृतत्व की प्राप्ति कही है। अन्य नाड़ियों को विभिन्न योनियों में पहुंचाने वाली कहा है। इन नाड़ियों से निकलने वाला आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इससे भी उसका सूक्ष्म होना सिद्ध होता है। जैन पंचभूत रूप सूक्ष्म शरीर में जय जीव मरण काल में स्थित होता है वह स्थूल शरीर के समान चलता टूटता फूटता नहीं। इसी सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ देता है। जब तक स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर अवस्थित रहता है तभी तक उसमें गर्मी रहती है। प्राण अंत होने पर सूक्ष्म शरीर के निकलते ही स्थूल से ठंडा हो जाता है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। यह शंका की जाए कि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार कल्पना रहत निष्काम पूर्ण काम और ब्रह्म की ही इच्छा करने वाले के प्राण उत्कर्मण नहीं करते, इससे ब्रह्म लोक गमन सिद्ध नहीं होता, तो यह शंका निर्मूल है, क्योंकि जेरी जीव से प्राणों के पृथक होने का निषेध किया गया है, शरीर से पृथक होने का निषेध नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जीव प्राणों के सहित ब्रह्म लोक गमन करता है। बृहदारण्यक में मरने वाले पुरुष के प्राण पृथक होते हैं या नहीं, इस प्रश्न का नेतिवाच के मोक्ष के अधिकारी नेति हो वार जागवल का, जागवल्क ने उत्तर दिया कि नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष के अधिकारी के प्राण उत्कर्मण का नियम नहीं, यह नहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रमाण श्रुति सिद्ध हैं। स्मृति प्रमाणों से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म वेत्ता काम क्रोध विजोगता नाम इत्यादि में कहा है कि काम क्रोध से रहत जीते हुए चित्त वाले ब्रह्म के साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही प्राप्त है। काम क्रोध वियुक्त नाम इत्यादि उपरोक्त प्रकार से जिन महात्माओं को जीवन काल में ही ब्रह्म साक्षात्कार कहा है, वह सदा परमात्मा में स्थित रहते हैं। वह प्रारब्ध पूरा होने पर जब देह त्याग करते हैं तब उसके प्राण अंतःकरण इंद्रियां आदि सभी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। प्रश्न उपनिषद में पिदते तांसा नाम रूपे के अनुसार प्राण आदि के नाम रूप मिट जाते हैं, इसी प्रकार के प्रमाण अन्य श्रुतियों में भी मिलते हैं जिनसे विभाग रहित होकर ब्रह्म में मिलना सिद्ध होता है। उस मरणा सन जीव के हृदय का अगर भाव प्रकाशित होता है तत् प्रकाशित द्वारा उस प्रकाश से जिसका द्वार प्रकाशित हो गया ऐसा वह विद्या समर्थात ब्रह्म विद्या की शक्ति से बृहदारण्यक के अनुसार मरण काल में जीव के हृदय का अगर भाव प्रकाशित होने से आत्मा के निकलने की बात कही गई है तथा ब्रह्म ज्ञानी और साधारण पुरुष के प्राण निकलने का पृथक मार्ग संयोग में शतम चैकाचा हृदय से इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया है। उसमें कहा है कि हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा की ओर निकली है, उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला अमृतत्व को प्राप्त होता है। अन्य नाड़ियां उत्कर्मण के समय तिरछी हो जाती हैं, अर्थात वे नाड़ियां इधर उधर के मार्ग से ले जाती हुई विभिन्न योनियों की प्राप्ति कराती है। मूर्धन नाड़ी से निकला हुआ जीवात्मा सूर्य की किरणों द्वारा ऊपर चढ़ता और मन की गति से ही सूर्य लोक में पहुंच जाता है। छंदोग के अनुसार ज्ञानियों के लिए सूर्य ही ब्रह्म लोक में जाने का द्वार है, अज्ञानियों के लिए यह द्वार बंद रहता है और वे अधम गति को प्राप्त होते हैं। यदि यह कहो कि रात्रि में तो सूर्य की किरणें होती नहीं, फिर रात्रि में जो मरते हैं उनको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती होगी, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि छंदोग के अनुसार सूर्य लोक से निकलती हुई रेशमा मनुष्य देह की नाड़ियां में भी व्याप्त हैं और नाड़ियों से निकलती हुई सूर्य लोक तक फैली हैं। ऐसे सिद्ध होता है कि सूर्य रश्मियों ने मनुष्य शरीर की नाड़ियों और सूर्य लोक में निरंतर संपर्क बना रखा है। इस प्रकार किसी समय भी मृत्यु होने पर सूर्य लोक में ज्ञानी का जाना आप तर्क प्रतीत होता है। स्मृति आदि में देवान मार्ग और पितरी मार्ग रूप दो गतियां कही गई हैं, उनका संबंध उत्तरायण और दक्षिणायण से है। भीष्म के उत्तरायण काल की प्रतीक्षा का वर्णन महाभारत में मिलता है। भीष्म ने अपने योग बल से दक्षिणायन काल में प्राणों को रोके रखा, परंतु ब्रह्म ज्ञान की महिमा तो बहुत प्रबल है, उसके साधक को दक्षिणायन काल अथवा कृष्ण पक्ष ब्रह्म लोक प्राप्ति में विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते। भीष्म पितामह का वर्णन तो उनके लिए समझना चाहिए जो उत्तरायण दक्षिणायण आदि काल विशेष को महत्व देते हैं। द्वितीय पादा समाप्ता।